ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। कई दिन से इस यजुर्वेदीय श्रुति का विचार चल रहा है। मनुष्य ने इस जीवा जगत में कैसा जीना चाहिए, ये इस वाक्य के द्वारा बता दिया, इस मंत्र के द्वारा श्रुति बता रही है। परमात्म भाव से जो भी कुछ आप देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, करते हो, इन सभी में परमात्म भाव हो तो व्यवहार तुम्हारा उत्तम होगा, जीवन की सार्थकता होगी। क्यों करना चाहिए भावना, तो श्रुति कहती है कि इसमें परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा की भावना करना चाहिए, क्योंकि इसमें सत्य जो है वो परमात्मा ही है। परमात्मा की भाव करने का अर्थ होता है सत्य की भावना धारण करना। जीव सत्य को जब धारण करता है तो असत्य का दुख मिट जाता है और सत्य का आनंद प्राप्त होता है। सत्य, हम झूठ की आदत पड़ी हुई है इसलिए सत्य कठिन लगता है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों की आदत हमें जो है वो असत्य को ही ग्रहण करने की, असत्य को ही मानने की, असत्य की ही सतत सत्य के रूप में भाव करने की आदत पड़ी हुई है। जैसा कोई व्यसनी व्यक्ति को, शराबी को हो, कहेंगे कि शराब छोड़ दे, तो वो कहता है कि छोड़ना बहुत कठिन है। या क्यों कठिन है, क्योंकि वो आदत से लाचार है। इसलिए परमात्मा हमें कठिन लगता है या सत्य कठिन लगता है, परंतु हम थोड़ा भी विचार नहीं कर सकते हैं कि हम सत्य के बिना जी सकते हैं क्या। असत्य हमें जिला नहीं सकता है, असत्य का असत्य से हमारा पालन नहीं होता है, पालन सत्य से ही होता है। हमारे जीवन का अधिष्ठान आधार जो कुछ है वो सत्य ही है, उसी के आश्रित हम जीवन जी रहे हैं, परंतु हम असत्य का ही आश्रय करते हैं और असत्य से ही हम अपने जीवन को मान लेते हैं। इसलिए श्रुति कहती है कि नहीं, इस जगत के अंदर तुम्हारा कुछ नहीं है और तुम भी कुछ नहीं हो। जो कुछ है वो परमात्मा का है और परमात्मा ही है। इस प्रकार से भाव करोगे तो क्या होगा, तुम निर्विकारी बनोगे। निर्विकारी पहले श्रुति कहती है कि ये सब परमात्मा का है, क्योंकि इसमें सब परमात्मा ही है। तुम्हारा घर परमात्मा का, तुम्हारा देह परमात्मा का, तुम्हारी इंद्रिया परमात्मा की, तुम्हारा मन परमात्मा का, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा की, और कहते हैं कि तुम भी परमात्मा ही हो, परंतु आप जानते नहीं हैं। इसमें श्रुति ये कहती है कि तुम अपने को जीव मत मानो, तुम अपने को देह मत मानो, तुम इस इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जा रहा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान किया जा रहा है, कर्मेन्द्रियों के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, वह सब मैं हूं, क्योंकि उसके अंदर बाहर पत्ता, पेड़ का पत्ता दिखने के लिए पत्ता है, परंतु उस पत्ते में व्याप्त क्या है? रस, रस। रस नहीं हो तो पत्ते का कोई अस्तित्व है? उस संपूर्ण पेड़ के पत्ते में रस के अलावा कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, पेड़ के अंदर भी रस के अलावा कुछ है? हा? रस के अलावा कुछ नहीं। रस को निकाल दोगे तो पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, ना पत्ते का अस्तित्व है। उस रस में पेड़ भास रहा है, उस रस में पत्ता भास रहा है, और उस रस को प्राप्त करने के लिए पत्ते को निचोड़ना पड़ता है, है ना? तब रस दिखाई देता है। बिना पत्ते को निचोड़े उसमें रस आपको व्यक्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से परमात्मा भाव करने का अर्थ क्या है मालूम है? परमात्मा भाव करने का अर्थ है कि संसार को निचोड़ना। परमात्मा भाव क्या करता है? तुम्हारे काम भाव को, तुम्हारे अहम भाव को, तुम्हारे मम भाव को, तुम्हारे लोभ भाव को, क्रोध भाव को, सभी को क्या करता है? तू का मने दिए भरीला विठले, काम क्रोधे के लिए घर देते। ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं? निचोड़े जाते हैं, अर्थात इनका अस्तित्व समाप्त होता है। इसलिए श्रुति कहती है कि तुम कण कण में परमात्मा भाव करो। जब तुम ब्रह्म में जगत भाव कर सकते हो, आत्मा में जीव भाव, देह भाव, मनुष्य भाव, कर्ता भोक्ता भाव जब तुम कर सकते हो, तो क्या तुम देह में, जीव में आत्मभाव नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म भाव नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। श्रुति कहती है कि यदि तुम्हें जीवन को सुखमय बनाना है, जीवन को आनंदमय बनाना है, जीवन को अमृतमय बनाना है, भय से मुक्त होकर जीना है, तो उपाय यही है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। उस परमात्मा भाव से भावित होकर के इस संसार को क्या करो? त्याग करो। तेन का मतलब परमात्मा भावेन, परमात्मा चिंतनेन, परमात्मा नामस्मरणेन आदि। आप एक विचार करो और अनुभव भी करो। आप राम 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 करते रहे तो दूसरा छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छोड़ना पड़ रहा है क्या छूट रहा है? श्रुति शर्त यही कहती है कि पहले तुम परमात्मा का संसार को छोड़ो नहीं कह रही है। क्यों नहीं कह रही है? अरे संसार है ही नहीं श्रुति में। श्रुति के दृष्टि से संसार नहीं तो छोड़ने की बात क्यों करेगी? इसलिए श्रुति आदेश परमात्मा के ग्रहण का देती है, परमात्मा के ज्ञान का देती है। संसार छोड़ने की बात श्रुति कर भी नहीं सकती है, क्योंकि छोड़ा तो तब जाता है कि जब वो हो, है ना? कोई कोई अब भिखारी है, सन्यासी है, सन्यासी बन गया, उसने कहा कि महाराज मैंने सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया। हमने पूछा कि भाई क्या छोड़ा, घर छोड़ा? कहा कि महाराज तीन तस्मे का घर था, दो गिर गए थे, एक गिरने वाला ही था। क्या? दो गिर गए थे और एक गिरने वाला ही था। पत्नी थी नहीं, शादी नहीं हुई थी, बाल बच्चे थे। जब शादी नहीं हुई तो बाल बच्चे कहां से आए थे? कहा कि कुछ खेती बाड़ी थी नहीं, वो तो मेरे बाप ने शराब पी करके सब पहले ही खत्म कर दिए थे। तो क्या भाई छोड़ा तुमने? क्या छोड़ा? था ही नहीं। अब वो सन्यासी का कोई महत्व होगा क्या? त्याग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि त्यागने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उसको त्यागी कैसा कहा जाएगा? परंतु यह है कि परमात्मा को ग्रहण करने से, परमात्मा को ग्रहण कर रहा है इसलिए संसार को छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? त्यागी भी है, समझ लीजिए। परमात्मा का स्मरण करोगे तो तुम्हें त्यागी बनने की जरूरत नहीं, त्यागी हो जाओगे। श्रुति की ये युक्ति है। देखो गांधी जी थे और मदन मोहन मालवीय जी थे, तो गांधी जी कहते हैं कि परदेशियों के कपड़े का त्याग करो। क्या करो? ये जो परदेशी जो कपड़े आ रहे हैं इनको छोड़ो, पहनना इसको बंद करो, इसको खरीदना बंद करो। और मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं भाई स्वदेशी ही पहनो। वो नहीं कहते थे कि परदेशियों का त्याग करो, स्वदेशी ही पहनो। जेल गांधी जी को होती थी, मदन मोहन मालवीय जी को कभी जेल में जाना ही नहीं पड़ा। तो किसी ने पूछा कि बात आप भी वही करते हैं और गांधी जी भी वही करते हैं, परंतु गांधी जी को जेल क्यों जाना पड़ता है और आपको कभी अंग्रेज सरकार कभी जेल में नहीं डालती है, क्या कारण? क्या बात? तो दोनों हम ये कही करते हैं, परंतु गांधी जी की बात इनके कानून के विरोध में जाती है और मेरी बात जो है इनके कानून का विरोध नहीं करती है। क्या? इसलिए मेरे को वो पकड़ नहीं सकती। श्रुति यही बात करती है, क्योंकि संसार को छोड़ने की बात करेंगे तो तुम लोगों को बुरा लगेगा। क्या बुरा लगता है कि नहीं? बुरा लगता है, इसलिए तो महात्माओं के पास कोई जाते नहीं, क्योंकि उनको पहला डर लगता है कि बाबा जी के पास जाएंगे तो बाबा जी यही कहेंगे, इसलिए नहीं जाना ही अच्छा है। श्रुति इसलिए कहती है कि क्योंकि श्रुति जानती है कि छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं भाई, तो छोड़ने की बात करना ही क्यों है? जो नहीं ग्रहण कर रहे हैं उसको ग्रहण करने के लिए आग्रह करती है। इसलिए कहा कि तुम ब्रह्म हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम अमृत स्वरूप हो, परंतु तुम्हें मालूम नहीं है। क्या? इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। इसलिए दुख का कारण तुम जो आप जो हो उसको नहीं जानते हो, इसलिए दुखी हो। इसलिए इस दुख का कारण है अज्ञान। तो क्या करो? उस अज्ञान का त्याग करो। और जिस अज्ञान के कारण आपके अंदर संसार भाव बैठा हुआ है, दिय भाव बैठा हुआ है, भोग भाव बैठा हुआ है, विषय भाव बैठा हुआ है, आदि आदि कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव बैठा हुआ है, परमात्मा के चिंतन से इन भावों का त्याग करो। परमात्म भाव करो सभी में। देखो, आप अनुभव कर लो, आपके मन में बहुत दूषित भाव आ गया, वो आएगा, क्योंकि अंदर जो संस्कार है रजोगुणात्मक तमोगुणात्मक सत्वगुणात्मक, उनका हमेशा ही चक्र चलता रहता है, गुणों का ही चक्र अंदर चलता रहता है, और उसके अनुसार संस्कारों का उसके साथ संस्कार भी घूमते रहते हैं, और उन संस्कारों से ही हमारे अंदर भावनाएं बनती जाती है, इच्छाएं बनती जाती है, कामनाएं बनती जाती है। वो आएगा, उसको तुम किसी हालत में नहीं रोक सकते हो। रोकने का तुम्हारे पास एक ही साधन है। क्या साधन है? परमात्मा का संग, सत का संग। यदि तुम सत का संग नहीं करोगे तो असत में तो तुम्हें बहना ही बहना है। इसलिए श्रुति कहते हैं कि तुम परमात्मा को पकड़ो, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, और उस परमात्मा का आश्रय करके असत्य का त्याग करो। आपके मन में काम आ गया, जैसा ही काम आ गया उसी समय तुम राम 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 करते जाओ। काम का शमन होता है कि नहीं अनुभव करो। क्रोध आ गया, आप राम 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 करते जाओ, क्रोध शांत होता है कि नहीं देखो, अनुभव करके देखो। वही बात श्रुति कहती है, काम को छोड़ो नहीं कहती है, क्रोध को छोड़ो नहीं कहती है, मुंह को, बाल बच्चों को, घर दार को, किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहती है, परंतु परमात्मा का स्मरण करो, चाहे वो नाम के माध्यम से हो, रूप के माध्यम से हो, गुण के माध्यम से हो, स्वरूप के माध्यम से हो, माध्यम कोई भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं है। नाम स्मरण करोगे तब भी परमात्मा ही होगा, गुणों का चिंतन करोगे तब भी परमात्मा ही होगा, क्योंकि अधिष्ठान तो सभी का परमात्मा ही है। वो कहते हैं एक बार राम तीर्थ जी अमेरिका गए थे और बड़ा उनका भाषण चल रहा था और लोग बड़े उनके भाषण से प्रभावित थे, बड़े बड़े लोग उनका भाषण सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए आते थे और बड़ी वहां उनकी कीर्ति हो गई। एक दिन राम तीर्थ जी ऐसे अपने मस्ती में आए और घूमने के लिए निकले अपने मस्ती में, और संयोग से जो एक वेश्याओं का मोहल्ला था उस मोहल्ले में चले गए। उनको नहीं मालूम था, और उस वेश्याओं के मोहल्ले में जब चले गए उसमें उनका उनकी कीर्ति तो सुनी थी उन लोगों ने भी। एक बड़ी सुंदर युवती थी वेश्याई, पर बड़ी सुंदर, उसने अपने घर के मकान के छज्जे से इस महात्मा को चलते हुए देखा तो उसके मन में ये भाव आ गया कि इधर यदि महात्मा को लोगों ने देखा और लोग देखेंगे तो इस महात्मा को तो बड़ा कलंक लग जाएगा, ये तो बड़ा विद्वान है, अमुक है तमुक है, और ये इस वेश्याओं के मोहल्ले में क्यों घूम रहा है। इसलिए उसने ये सोच करके कहा कि इनको सचेत करना चाहिए और इनको वापस भेजना चाहिए, इसलिए उन्होंने आवाज दी ऊपर से। क्या अपने मस्ती में थे, फिर दो तीन बार आवाज दिए तो उन्होंने सुना, इधर उधर देखा तो कहीं नहीं, तो कहा कि महाराज जी मैं ऊपर से बोल रही हूं। क्या महाराज जी? उसने कहा कि महाराज जी मैं ऊपर से बोल रही हूं। तो रामतीर्थ जी ने ऐसा ऊपर देखा तो वो छज्जे में खड़ी थी, बड़ी सुंदर थी। कहा कि महाराज आपका इस मोहल्ले में गुजरना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं ये मोहल्ला जो है वेश्याओं का है, और यहां से आप यहां आप घूमोगे तो आपकी अपकीर्ति हो जाएगी, इसलिए आप वापस लौट जाओ। रामतीर्थ जी मैं सुन रहे हैं, ना पीछे मुड़ रहे हैं ना कुछ, उसको ही देखते रहे, और वो बोलती गई बताती गई वापस जाओ कहती गई। रामतीर्थ जी वहीं खड़े हैं। तो उस वेश्या के मन में आया का कहा कि शायद आज संत का मन बिगड़ गया लगता है, मेरे को लगातार देख रहे हैं, अपलक देख रहे हैं और वापस भी नहीं जा रहे, इसका मतलब है कि आज इनका मन बिगड़ गया। कहा कि महाराज मेरे को इस प्रकार से आप देख रहे हो, ऐसा देखना ठीक नहीं है, थोड़ी सी कड़क आवाज में बोला। तो रामतीर्थ जी जोर जोर से हंसने लगे। वेश्या कहती है कि मैं ये इनको डांट रही हूं और ये हंस रहे हैं। कहा कि महाराज क्यों आप हंस रहे हैं? मैं इतना जोर जोर से आपको डांट रही हूं बता रही हूं फिर भी आप मान रहे मेरी बात को। तो रामतीर्थ जी कहते हैं अरे पगली, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे प्रभु ने तुझे इतनी सुंदर वाणी दी, इतना सुंदर रूप दिया, वो मेरा परमात्मा कितना सुंदर होगा। क्या जिसने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया जी, इतना सुंदर वाणी दी, इतनी सुंदर इंद्रिया दी, वो मेरा परमात्मा कितना सुंदर होगा, उस पर मेरी परमात्मा की वाणी कितनी सुंदर होगी, मैं तो ये सोच रहा था। अब बताओ, काम की भावना वेश्या के अंदर थी पर क्या रामतीर्थ के अंदर थी? क्यों नहीं थी? सामने तो वेश्या है, रूपवान है, युवती है, परंतु काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें भी रामतीर्थ जी का परमात्मा का स्मरण था, वो परमात्मा की तरफ दृष्टि दिया जा रही थी, उस परमात्मा के रूप को देख रहे थे, उस रूप के पीछे परमात्मा का रूप है, छिपा हुआ है, परंतु हम किसका देखते हैं? संसार का देखते हैं। श्रुति कहती है कि ये संसार का देखना तब बंद हो जाएगा कि जब परमात्मा को स्वीकार करोगे। तेन त्यक्तेन भुंजिता, यहां त्याग क्या है? त्याग ही भोग है। क्या? जब त्याग होगा तो भोग साथ ही साथ है, दो पहलू है एक ही सिक्के के, परमात्मा के ही दो पहलू हैं। इसलिए तो भगवान ने भी गीता ने कहा कि त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। क्या? जिस क्षण में त्याग होता है उसी क्षण में शांति मिल जाती है, और शांति मिलती है तो आनंद, शांति में ही आनंद है कि अशांति में आनंद है? शांति का मतलब क्या? शांति का मतलब होता है अंतकरण, अंतकरण अर्थात अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार स्थिर हो जाना, उसके अंदर गुणों की, संस्कारों की, विषयों की, भोगों की आदि किसी प्रकार का विकृति न होना, विकार न होना, काम क्रोधादिकों से भी, काम क्रोधादिकों की भी वृत्ति उसके अंदर न उठना, उसका नाम स्थिरता है। परमात्मा का नाम लेती होता क्या है? परमात्मा का नाम लेती ही आपका अंतकरण स्थिर होता है। क्यों स्थिर होता है? क्योंकि जैसा ही परमात्मा का नाम लिया, संसार छूट गया। क्या छूट गया? संसार छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, आपको नहीं मालूम पड़ता है, परंतु छूट जाता है। इसी त्याग से कहते भोग करो। आगे आगे इसमें कहते मा गृदह कस्वित धनम, कहा कि इस प्रकार से जब भोग होगा, कौन सा, किसका भोग होगा? परमात्मा की आनंद का भोग किसको होगा? क्या जो भोग करना चाहता है साधक के लिए, मुमुक्षु के लिए कहो, जिज्ञासु के लिए कहो, साधक के लिए कहो, या भक्त के लिए कहो, बात एक ही है। भक्त परमात्मा का, परमात्मा को स्वीकार करता है तो अपने को परमात्मा का मानने लगता है, परमात्मा को अपना मानने लगता है, तो दोनों की एकता होती है, तो भक्त को आनंद प्राप्त होता है। योगी चिंतन करता है परमात्मा का, तो उस चिंतन के द्वारा चिंतने चिंतने तद्रूपता, योगी के अंदर भी परमात्मा रूपता आ जाती है, तो वो भी परमात्मा के साथ एक होता है। ज्ञानी संसार को मिथ्या करके अपने को ही ब्रह्म भाव से भावित होकर के ब्रह्म चिंतन करते करते उस ब्रह्म का, आत्मा का ही ब्रह्म के रूप में ज्ञान प्राप्त करता है, तो अमृतत्व का भोग होता है। योगियों को आनंद का भोग होता है और भक्त को प्रेम का भोग होता है। भक्त के अंदर इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम आ जाता है कि वो अपने को भी भूल जाता है, और जब अपने को भूल जाता है तो परमात्मा ही बन जाता है। क्या? वो परमात्मा ही जिस इष्ट का स्मरण कर रहा है, जिस इष्ट का शरणागति कर रहा है, जिस इष्ट को अपना लिया है, वो वही बन जाता है। ये गोपियों का अनुभव है, सभी भक्तों का अनुभव है। इसका वही भोग है यहां। क्या? इसलिए श्रुति ने यह बता करके अब कहा कि इसके अलावा, क्योंकि हमारे जीवन का परम धन यही है। श्रुति यह कहती है कि मा गृद कस्वित धनम, कस्वित धनम मा गृद, फिर जब इस प्रकार से भोग करो तब कस्वित धनम मा गृद, कस्वित इसके कई लोग अलग अलग अर्थ करते हैं, परंतु भगवतपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि किसी के भी धन की इच्छा न करें, कस्य स्वित अर्थात किसी के भी। कुछ ये भी कहते हैं कि फिर धन किसका, कस्यचित धनम, फिर धन किसका है, तात्पर्य दोनों का एक ही है। क्योंकि जब इस प्रकार से परमात्मा का आनंद का भोग मिल जाएगा तो आनंद से फिर कोई दूसरी वस्तु है क्या? आनंद से दूसरी कोई वस्तु है? स्वर्ग का अमृत पान करने के लिए मिल जाए तो मर्त्य लोक की छाछ की इच्छा करना क्या है? नादानी है कि और कुछ है? नादानी है। जब ब्रह्मामृत मिल जाएगा, ज्ञानामृत मिल जाएगा, आनंदामृत मिल जाएगा तो फिर विषयामृत की इच्छा करना निरर्थक है कि नहीं है? तो कह रहे कस्य स्वित धनम। अब यहां कस्य स्वित और धन ये तीन पद इसके अंदर है क्या, और तीनों पद विचारणीय है। कस्य का मतलब किसका, क्योंकि यहां षष्ठी है कि नहीं है, ये षष्ठी का एक वचन है, संबंधे षष्ठी कहा है कि जहां षष्ठी होगी तो निश्चित संबंध होगा। तो श्रुति ये भी कहती है कि कस्य स्वित, कस्य अर्थात किसका, और स्वित किसका कहने से बाहर गया और स्वित कहने से अंदर आ गया, क्योंकि स्व आ गया ना, स्व, स्व का मतलब अपना, क्या, स्व का मतलब अपना अपना, अर्थात ना दूसरे के धन की इच्छा करो और ना अपने धन की इच्छा करो, समझिए ना। कस्य स्वित शब्द दिया कि नहीं, स्वित, स्वित का मतलब जो अपना है, अपने अंदर है, और एक बाहर है, जगत के अंदर है। इसलिए जगत अर्थात दूसरा, जगत अपने से दूसरा है, किसका है वो, तुम्हारा है क्या? जगत किसका है? माया का, माया का जगत किसका है? माया का है। ब्रह्म का है ऐसा मत समझना कभी भी, ईश्वर का है ऐसा मत समझना, समझिए ना। कारण भला मान सकते हो परंतु वो भी कारण कैसा है, आरोपित है, आरोपित कारणता है, वास्तविक नहीं कारणता है, क्या, आरोपित कारणता है। जैसे आप लोग किसी महात्माओं के ऊपर आरोप करते हैं, क्या कहते महाराज ये सब आपकी ही कृपा से हुआ है, क्या बच्चा हो गया तो कहते महाराज आपकी कृपा से ही हुआ है, धन मिल गया तो कहते महाराज आपकी ही कृपा से हुआ है, विद्यार्थी पास हो गया, लड़का पास हो गया तो कहा महाराज आपकी ही कृपा से हुआ है। तो ये कृपा का आरोप कर रहे हैं कि वास्तविक कृपा है, आरोप है, आरोप, समझना। ऐसा ही पर ईश्वर के ऊपर इस जगत के कारणत्व का आरोप है, समझना। अरे बच्चा पास हो गया, उसने अपना पढ़ाई की, अच्छा ये कर दिया और वो पास हो गया तो यहां महात्मा की कृपा को मानने की क्या जरूरत है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा मनवा लेती है, समझ लेना। ईश्वर ये माया का परिणाम है, ध्यान रखो। आप चित्रपट देखते हो तो उस क्या वो चित्र को निर्माण क्या वो पर्दे ने किया है? पर्दा चित्र है, पर्दे से चित्र है, पर्दे का चित्र है, क्या है? परंतु फिर भी वो पर्दा उन चित्रों के प्रति आरोपित कारणत्व है, अधिष्ठान रूपी न, ऐसा ही परमात्मा का। ये जगत परमात्मा का नहीं है, परंतु चित्र पर्दा ही है कि और कुछ है? चित्र पर्दा ही है। इसी प्रकार से जगत ब्रह्म ही है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, श्रुति ये बताती है। ब्रह्म का नहीं है परंतु ब्रह्म है, चित्र पर्दे का नहीं है परंतु चित्र पर्दा है। इसी प्रकार से यहां भी कह रहे हैं कि कस्य अस्मित धनम, अर्थात जो तुम बाहर जिस धन को चाहते हो वो तुम्हारा नहीं है, वो दूसरे का है। तो दूसरे का धन को मां कांक्षी, कामना मत कर, ये अर्थ है। कस्य का, कस्य के दृष्टि से कस्य धनम मा गृद, स्वित धनम मा गृद। कस्य का मतलब होता है किसी के भी, क्या या दूसरे के, किसी के भी धन की इच्छा मत कर, कामना मत कर, चाहना मत कर, ये एक अर्थ है। तो कहा चलो किसी के धन की इच्छा न करे, परंतु अपने धन की तो इच्छा की जा सकती है, जो अपना है, क्योंकि अपना भी तो धन है कि नहीं है? कुछ मालूम नहीं है आपको, बताऊंगा मैं। कहा कि अपने धन की तो इच्छा कर सकते हैं, आपके धन की इच्छा का मतलब क्या होता है? रक्षा की इच्छा होती है कि नहीं है? जो आप जो ये करते हो, घर बनाते हो, किसके लिए बनाते हो? अपने लिए बनाते हो कि दूसरों के लिए? अपने लिए बनाते हो कि नहीं? अर्थात ऐसी कई वस्तुएं बताएंगे, तो अपना जो अपना धन है उस अपने धन की भी इच्छा होती है, रक्षा की इच्छा होती है, और दूसरे के लेने की इच्छा होती है। क्या होता है? दूसरे की धन की लेने की इच्छा होती है और अपने धन की रक्षा की इच्छा होती है, समझ रही ना? कहने का तात्पर्य है कि यहां दोनों तरफ श्रुति संकेत कर रही है कि कस्य शब्द से दूसरे के धन की आकांक्षा मत कर, कामना मत कर। लेने की तो बातें नहीं, कामना भी नहीं करना है, क्योंकि बड़ा खतरनाक है, समझ रहे? और आपने भी धन के रक्षा की कामना मत कर। अब धन क्या है कि जिसकी कामना की जा सकती है? ये जो हम जिसको धन कहते हैं, ये एक प्रतीकात्मक धन है। क्या? ये प्रतीकात्मक धन है। जैसा मूर्ति परमात्मा की प्रतीकात्मक है कि नहीं है? मूर्ति को देखते हैं तो आपके अंदर भाव निर्माण, परमात्मा भाव निर्माण होता है, उस भाव की अभिव्यक्ति का साधन है। क्या? इसी प्रकार से बाहर का धन आपके अंदर एक भाव निर्माण करने का साधन है। भाव क्या? क्योंकि उसी से ही, उसको देख करके आपके अंदर एक वृत्ति निर्माण होती है। वृत्ति क्या? एक वृत्ति निर्माण होती है। अवृत्ति कई प्रकार की है। वृत्ति का मतलब होता है एक प्रकार का होनापन। आपके अंदर काम निर्माण होता है। काम, वृत्ति का मतलब काम, यदि लेने की है तो, समझ लीजिए ना। और वो काम क्या करता है? कामात्मक वृत्ति आपके अंदर अंतकरण में उत्पन्न हो गई तो कामात्मक वृत्ति आपके अंतकरण को क्या करेगी? देखो, पानी में एक पत्थर डाल दिया तो पानी में विकार निर्माण होता है कि नहीं होता है? हाँ, तरंग निर्माण होगा कि नहीं? तो इसी प्रकार से ये बाहर के वस्तु को, दूसरे के वस्तु को आप अपने अंतकरण में डालोगे तो अंतकरण में तरंग उठेंगे कि नहीं उठेंगे? वो तरंग का नाम ही है वृत्ति, समझना। अब वो तरंग जब उठेगा तो तरंग फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा, अर्थात पूरे पानी को क्या करेगा? पूरे पानी को चंचल बना देगा, विक्षिप्त कर लेगा। तो इसी प्रकार से बाहर के धन की आप यदि कामना करते हैं तो ये काम जब इच्छा अंतकरण में निर्माण हो जाएगी उन विषयों के संग से, तो अंदर अंतकरण में काम उत्पन्न हो जाएगा। और काम क्या करता है? भगवान ने काम को जीव का शत्रु कहा है। क्या कहा है? जीव का शत्रु। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। ये हमारे जीवन के, जीव के शत्रु है। देह के नहीं, तो आप कहेंगे कि चलो जीव के भले हो, पर देह के तो पोषक है कि नहीं है? अरे काम से देह का पोषण नहीं होता है। काम तुम्हारे देह का, काम तुम्हारे देह को पोषित नहीं करता है। पोषण किससे होता है आपको ये भी नहीं मालूम है? पोषण तो परमात्मा के प्रेम से होता है। पोषण तो परमात्मा के आनंद से होता है। आनंद ही तुम्हारे जीवन को हो पुष्ट कर रहा है। काम तो अग्नि है। क्या है? काम को अग्नि कहा है, क्रोधाग्नि कहा है, कामाग्नि कहा है। काम तो तुम्हें जलाने वाला है। अब जो जलाने वाली वस्तु होगी वो तुम्हें पोषने वाली होगी क्या? हा? कतई नहीं होती है। काम तो हो तुम्हारे देह को भी जलाता है, इसलिए तो बुढ़ा होना पड़ता है। हाँ, बुढ़ा कौन होता है? तुम होते हो कि दिए होता है? दिए होता है कि नहीं? क्यों होता है नहीं मालूम आपको? रहस्य नहीं मालूम है का? उम्र हो गई महाराज, उम्र हो गई तो बुढ़े हो गया। उम्र क्या है? कभी भी सोचते ही नहीं क्या है तो। अरे ये कोई काल तुम्हें बुढ़ा नहीं करता है, और काल तुम्हें मारता भी नहीं है, ये ध्यान रखो। काम तुम्हें जला रहा है, काम तुम्हें बुढ़ा बना रहा है, तुम्हें मालूम ही नहीं है। समझ ना, काम ही तो तुम्हें कर्म में प्रवृत्त करता है, कर्म भोग में प्रवृत्त करता है, और वो भोग तुम्हें क्या कहा है, भोगो न भुक्ता स्वयमेव भुक्ता। तुम उन भोगों के द्वारा भोगे जा रहे हैं। क्या है ये कर्म का भोग है तुम्हारा, बुढ़ा जो हो रहे हो ना, ये तुम्हारे कर्म का भोग है। और वो कर्म किसका है, काम से है। काम ही तो कर्म निर्माण करता है, ये चक्र चलता रहता है। और दोष तुम्हें कभी परमात्मा के ऊपर देते हो, कभी काल के ऊपर देते हो, कभी रोग के ऊपर देते हो, कभी किसी प्राणी के ऊपर देते हो कि उसने उसकी हत्या कर दी। नहीं, ये उसके पिछले रहस्य हम नहीं देखते, इसलिए ऐसा बोलते ऐसा कहते हैं। समझ रही ना, ये काम तुम्हें मार रहा है, काम तुम्हें क्षीण कर रहा है। कमजोर जो होता है, कमजोरी जो होती है, मन जो दुर्बल बन जाता है, वो क्यों, भगवान ने क्या कहा है अर्जुन को, इतना शूर वीर महायोद्धा धनुर्धारी, परंतु गांडीवम स्रंसते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते। अर्जुन ने कहा, महान पराक्रमी, महान बलवान, महान भक्त, महान तपस्वी, परंतु काम ने घायल कर दिया। क्या कर दिया, अर्जुन नहीं जानता है, परंतु भगवान जानते हैं कि अर्जुन की यह स्थिति क्यों हो गई। समझना, और वो निवृत्त करने का ही साधन भगवान ने अर्जुन को बताया। वो काम ने अर्जुन के हृदय को दुर्बल बना दिया, दुर्बल, समझना, काम ने मोह निर्माण कर दिया, और मोह ने ये अंतकरण की दुर्बलता जो है वो मोह, वही मोह है। और वो मोह क्यों, काम के कारण, सबकी जड़ काम है, काम बड़ा गहन है, समझिए, संस्कार रूप काम है, वासना रूप काम है, और इच्छा रूप काम है। जब इच्छा होती है तो वो इच्छा भी काम है, पर ये स्थूल काम है, वासना रूप काम सूक्ष्म काम है, और संस्कार रूप काम अत्यंत सूक्ष्म है। तो यहां कह रहे हैं कि दूसरे के धन की इच्छा मत कर, अर्थात तुम कामना मत कर दूसरे के धन की। देखो इसमें भी राष्ट्र श्रुति का एक एक वाक्य बड़ा, क्यों कह रही है कि दूसरे की इच्छे की कामना मत कर, क्योंकि श्रुति जानती है कि तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं, कोई धन नाम की कोई वस्तु नहीं है। तुम जो असत वस्तु के तरफ जो दौड़ रहे, इससे तुम क्या हो जाएंगे, तुम अपने से विचलित होकर के अपने को भूल जाओगे और असत में चले जाओगे जो नहीं है। समझना, जैसे मृगजल के नदी में स्नान करने की ये हो गई, मृगजल देखा और कहा कि चलो अभी यहां जाकर के, अरे ये कि कितना जल से तो भरा हुआ तालाब है, और बड़ा संताप हो गया, सूर्य की गर्मी हो रही है, अब उस तालाब में जाकर के क्या करेंगे, स्नान करेंगे, शीतलता प्राप्त करेंगे, है ना, ये कौन करेगा। अब जो मृगजल को हो वास्तविक मानता है वही तो करेगा कि नहीं है, और जो मृगजल को हो जानता है वो करेगा क्या, नहीं। श्रुति जानती है और जीव नहीं जानता है। ये मृगजल के नदी में स्नान करने के का समान, और उस स्नान से, उस जल से शीतलता को प्राप्त करने के समान ये चीज है। समझ रहे ना, वास्तविक है ही नहीं कुछ। जो नहीं है उसको चाहना अज्ञानता है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम दूसरे के धन की ही इच्छा मत कर, क्योंकि तुम्हारे अलावा दूसरा कुछ धन नहीं है। आत्मधन ही सबसे बड़ा है। अभी घड़ी ने जवाब दे दिया है, इसलिए आज ये विराम करते हैं। अभी दो तीन दिन है समाधि, परंतु कल इस श्लोक को पूरा करूंगा और फिर दो दिन में, दो दिन और है तो उसमें कुर्वन्ने वे कर्माणि इसका प्रारंभ कर लेंगे, फिर बाद देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।